हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय 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 राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम निताई गौर हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल निताई गौर प्रेमानंदे जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हमने आपको बरसाने का इतिहास बताया, आज हम आपको संक्षेप में चार गढ़ पर क्या क्या हुआ वो बताएंगे। पहला गढ़ कौन सा है? भानुगढ़। तो भानुगढ़ ये राधा रानी और कृष्ण, राधा रानी और विश्वभानु महाराज, कीर्तिदा माता जी, श्रीदामा और अनंग मंजरी का घर है। इस पर बहुत सारी लीला हुई है, बहुत सारी लीला। उसमें से एक लीला वो थी एक बार कृष्ण ने बहुत बार चोरी करने के बाद राधा रानी और गोपी सब परेशान हो गए थे। तो उन्होंने कृष्ण भगवान को एक दिन बहुत खाना खिलाया, ये सोचकर कि अभी इनको सबक सिखाएंगी कि रोज़ हमारा सब चुरा लेते हैं। इतना खाना खिलाया कि उधर ही कृष्ण भगवान सो गए। और सोने के बाद में सारा उनका जो गहना बनाया था ना, सब पहना चुरा लिया उन्होंने। आपको एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं। मिक्स किया फिर दो उसको। हरे कृष्णा थोड़ा सा। तो कृष्ण भगवान से उनकी चोरी से परेशान होकर एक दिन सब गोपियों ने सोचा कि हम उनको सबक सिखाएंगे। इसलिए एक दिन जब वो मिलने को आई तो उन्होंने कुछ मना बिना कुछ नहीं किया, तुरंत उनको बोला आप बैठो बैठो, आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा व्यंजन लेके आए हैं। सभी गोपियों ने मिलकर इतना खिलाया कि पहले बैठ के खाया, फिर टेक के खाया, फिर लेट के खाया, फिर सो गए उधर ही। और बहुत गहरी नींद सोने के बाद में सभी गोपियों ने क्या किया, कृष्ण भगवान का सर से लेकर पांव तक जितने भी अलंकार थे सब चुरा लिए, मुरली भी चुरा लिया और सब लेके घर चले गए। बहुत देर के बाद में, कई घंटों के बाद में जाग आई उनको, देखा तो सारे अलंकार गायब, एवरीथिंग, पायल से लेके जितने भी उंगलियों के अलंकार है, सर तक, मोर पंख तक सब गायब है। वो तो भगवान है, वो अंतर्यामी है, सब जानते हैं किसने किया है सब कुछ। बोला कोई बात नहीं, उसको वापस लेके आएंगे। तो घर जाते हैं तो माताजी पूछती हैं, यशोदा माताजी क्या हुआ, तुम इतने नटखट कैसे हो, इतना सब पहना के भेजा था सब छोड़ के आ गए। बोला कोई बात नहीं, वो आ जाएगा वापस। रात को सो जाते हैं, अगले दिन उठते हैं, माखन मिश्री खाते हैं और मैया कहते हैं कि आपको अभी कपड़ा पहनना है। बोला नहीं नहीं आज मैं ही पहनूंगा। और कुछ देर बाद में एक सुंदर सी लड़की उनके सामने आती है, बहुत बड़ा घूंघट लेकर, बहुत अलंकार पहनकर सुंदर, और मैया के पैर छूती है। तो मैया कहती है अरे कौन हो तुम, तुम्हारा नाम क्या है? तो कहती है मेरा नाम श्यामा सखी है। कहाँ से आई हो? वो कहते हैं कि नंदगांव में नया नया ब्याह हुआ है मेरा। तो सब ने कहा कि यशोदा माता का आशीर्वाद लेना चाहिए, इसलिए मैं आपके पास आशीर्वाद लेने के लिए आई। अच्छा अच्छा, बहुत गले लगाया और आशीर्वाद दिया। उसके बाद में उस लड़की ने अपना घूंघट उठाया तो कौन था वो? श्री कृष्ण भगवान। वो सखी बनकर आए थे। तो माता ने पूछा अरे ये क्या छल है आज का तुम्हारा? बोले कुछ नहीं, बाद में समझ में आएगा आपको, मैं जा रहा हूँ। थोड़ा घूंघट ओढ़ लिया, बरसाने में गए। बरसाने में जब पहुँचे पहाड़ के नीचे तो कृष्णा श्याम ऐसे करके गिर गए, एकदम बेहोश से गिर गए। तो कुछ सखियाँ भाग भाग के आई, बोले अरे क्या हो गया क्या हो गया? बोले देखो सखी, देखो श्याम का नाम लिया तो बेहोश हो गई। अच्छा कहाँ से आई है? तो पता नहीं, नई नई गोपी है, कितना प्रेम है कृष्ण के लिए, नाम लेते ही बेहोश हो रही है। तो कुछ लड़कियों ने आके उनको पंखा किया तो होश में आ गई, फिर दोबारा ऐसे पकड़ के कुछ चल रहे थे आगे आगे, कन्हैया ऐसा करके फिर दोबारा गिर गए, फिर बेहोश हो गए। अरे बाप रे, इतना प्रेम! और गोपियां इकट्ठा हो गई और सब गोपियों ने हवा दिया उसको, फिर वापस उठ गई। ऐसे करते करते सब जगह पर गोविंदा गोपाल कन्हैया श्याम ऐसे पुकारते पुकारते जितनी बार बेहोश हो गई उतनी और गोपियां इकट्ठा हो गई। सबको आश्चर्य हुआ, अरे हमको इतना प्रेम नहीं है, इस गोपी को कितना प्रेम है, देखो नई नई गोपी है, अभी अभी ब्याह के आई हुई लगती है, कभी देखा नहीं पहले उसको नंद बरसाने में, इसको राधा रानी को मिलाना चाहिए। राधा रानी बड़ी खुश होगी ऐसी गोपी को मिलकर, जिसको कृष्ण से प्रेम करती है, इसको देख के बड़ी खुश होगी। तो सब लोग उसको लेकर राधा रानी के दरवाजे तक पहुंचे और ये सब नीचे से लेकर पहाड़ तक, कई बार गिर गई वो बेहोश होकर, और गेट में लास्ट में श्याम बोलो
श्याम,
गिर गई तुरंत। आप नहीं गिरे, आप तो अच्छे हो, ऐसे ही हंस रहे हो, वो तो बेचारी गिर गई। तो वो देखकर कुछ गोपियां उसको हवा देने में लग गई और कुछ गोपियां अंदर भाग गई राधा रानी को बुलाने के लिए, आ जाओ जल्दी आ जाओ, देखो देखो कौन आया है। तो राधा रानी भाग भाग के आती है और देखते हैं तो क्या, कोई लाइफ का चिन्ह नहीं उसके अंदर, कोई सांस नहीं चल रही है, कुछ नब्ज नहीं मिल रही है। तो कोई गोपी एक रुई लेके आती है, रुई कॉटन, और नाक को लगाती है तो रुई भी नहीं हिल रही है। बोले बाप रे, ये तो लगता है चली गई, इतना प्रेम भगवान के लिए। सब लोग परेशान हो गए, अभी बरसाने में वृंदावन में गोकुल में ऐसा स्थिति है कि कोई किसका एनवी नहीं करता है, नोबडी इज एनवियस। अभी आपको अगर इससे ज़्यादा मार्क मिल गए तो आपको एनवी आती है कि अरे मुझे ज़्यादा मार्क मिलने चाहिए थे लेकिन उसको मिल गए, उसका फर्स्ट रैंक आ गया, मेरा सेकंड आ गया। या वो आप में से आपसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है तो आपको लगेगा अरे मेरे से अधिक ब्यूटीफुल है। तो ऐसे अगर कृष्ण से लिए कोई ज़्यादा भक्ति करता है तो दूसरों को एनवी उत्पन्न होता है, मैं तो इतना अच्छा भक्त नहीं हूँ, मेरे से अच्छे भक्त है। लेकिन बरसाने में वृंदावन में ऐसा नहीं है, जितना लोग ज़्यादा कृष्ण से प्रेम करते हैं उस व्यक्ति से लगा लोग और ज़्यादा प्रेम करते हैं। गेट माय पॉइंट? जितना एक व्यक्ति भगवान पर प्रेम करता है उतना बाकी लोग उस पर ज़्यादा प्रेम करते हैं, ये देखकर कि कितना प्रेम है कृष्ण के ऊपर। तो ये देखकर राधा रानी भाग भाग के आई और उसको देखकर खुद व्याकुल हो गए, देख अरे कितना प्रेम है, मुझसे भी अधिक प्रेम है इसके अंदर। तो लोग परेशान हो गए, अभी बहुत कोशिश किया, लास्ट टाइम बहुत कोशिश किया, वो उसमें नहीं आई। फिर वापस ललिता विशाखा ने मीटिंग किया, क्या करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, तो मर जाएगी ऐसे। तो उनको तुरंत ललिता को याद आया, अरे हाँ हमने तो कल ही चुराया था सब कृष्ण का सामान, सारे अलंकार जेवर मुरली मोरपंख सब चुराया था ना, राधा रानी तुमको हम कृष्ण बनाएंगे आज, कम से कम तुम ब्लू नहीं हो गोरी हो लेकिन सारा पहना देंगे आपको पूरा, तो कम से कम थोड़ा बहुत तो अच्छा लगे उसको, इतनी कृष्ण के विरह में है वो, सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा। तो उन्होंने कुछ गोपियां लग गई हवा देने के लिए और कुछ गोपियां भाग गए अंदर राधा रानी को श्रृंगार करने के लिए, और बहुत कम समय में सारा कृष्ण का श्रृंगार जो है पूरा पहना कर, पीताम्बर पहना कर, पूरा मुरली हाथ में देकर, मोर पंख पहनकर उसको बाहर लेके आते हैं, बोलते अभी कृष्ण के जैसे खड़े हो जाना। तो एक पैर ऐसे करके, कौन सा राइट की लेफ्ट, लेफ्ट, अरे सोचो बराबर से, मतलब आधा पैर कौन सा, सामने वाला आधा कौन सा, पक्का ना, हाँ बराबर है। तो हाँ सब लोग देख रहे हैं ना इधर, हाँ इसलिए सब लोग बहुत होशियार लोग हो, सब लोग बड़े होशियार है, सब लोग देख रहे हैं इसलिए इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, यस यस राइट 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 राइट। मैं सोच रहा हूँ मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूँ लेकिन मैं तो मुझे ही उल्लू बना दिया आपने, गुड गुड, ओपन बुक एग्जाम है ना अपना, ओपन बुक। तो वो खड़े हो गए ऐसे एकदम फर्स्ट क्लास। कितनी जगह पे बैंड है कृष्ण को, एक गले में है ऐसे पहनते ना, तो ऐसे गला, एक कमर में है और एक पैर में है, क्या बोलते हैं उनको इसके लिए, त्रिभंग, त्रिभंग, तीन जगह पर बैंड है उनको, तो त्रिभंगी कृष्ण कहते हैं। तो खड़ा कर दिया उन्होंने उसको और फिर गोपी के कान में बताया, हे गोपी देखो देखो श्याम सुंदर आए हैं, देखो देखो उठो उठो जल्दी उठो उठो, कितनी देर बेहोश पड़ी रहोगी, देखो अभी तुम्हारे जिसके लिए तुम याद कर करके बेहोश हो रही हो, देखो देखो वो आ गए हैं। तो वो गोपी जो है वो एक झटके में ऐसी कूद के उठी और ऊपर का जो घूंघट है वो फेंक दिया, मैंने कहा तुम लोग सब लोग बहुत होशियार बनते हो, हाँ उतारो सारा उतारो सब कुछ उतारो, तुमको लगा कि खाना मिला खिला के मुझे छुला दिया तुमने, सब चोरी कर दिया और मैं तुमसे उल्लू लगता हूँ, हाँ सबको रंगे हाथ पकड़ा है तुमको, अभी सब सामान उतारो। सबकी सर नीचे हो गई शर्म शर्म के मारे, हाँ इतना बढ़िया नाटक किया था उन्होंने श्यामा को भी, कोई पहचान नहीं पाया उनको कि ये कृष्ण है। जब घूंघट उठाया और आवाज से बोलने शुरू किया तब सबने पहचाना। तो ये लीला कहाँ हुआ था, भानुगढ़ पे, भानु महल में हुआ था, मतलब भानु महल में अभी जाने वाले थे, सब उतार लिया, फिर बड़े ऐड से सबके सामने पहना उन्होंने, वैसे खड़े होकर मुरली बजाया बाय, घर में पहुंचे और मैया को बताया, देखो ना मैंने कल कहा था ना आपको सब वापस आ जाएगा, देखो सब वापस लेके आया मैं, ऐसा है। तो हमारे जो कृष्ण है वो बहुत बड़ी बड़ी क्या कहते हैं उसको, छद्म लीला, छद्म लीला मतलब क्या, इसमें बहुरूपी रूप धारण करते हैं, अलग अलग रूप धारण करते हैं, उसको छद्म कहते हैं, छद्म मतलब चीटिंग, छद्म इज चीटिंग। तो छद्म लीला मतलब वो क्या करते हैं, कभी कभी उनको ना रहा नहीं जाता है नंदगांव में, नंदगांव में उनको रहा नहीं जाता है, इसलिए वो कभी चूड़िया बेचने वाले बनकर आ जाते हैं। शाम चूड़ी बेचने आया तो वो चूड़ी बेचने के बहाने आते हैं। फिर राधा रानी के क्या हो रहा है पीछे, राधा रानी के हाथ पकड़ता है अपने हाथ में और चूड़ी पहनाते हैं अलग अलग, फिर ये हाथ पकड़ते हैं फिर इसको पहनाते हैं। फिर कभी ज्योतिष देखने वाले बन के आते हैं, आई एम ए वेरी एक्सपर्ट पामिस्ट ऐसा। सब लोग बोलते अरे क्या हमारी शादी कृष्ण से होगी, बताओ ना बताओ, हमारे हाथ में वो रेखा है क्या कि हमारे कृष्ण पति बनेंगे नहीं बनेंगे। सब लोग अपना अपना हाथ दिखाते, राष्ट्र में राधा रानी अपना हाथ दिखाते हैं, ऐसा लीला करते हैं। कभी फूल बेचने वाली बनकर आती है, फूल माला, कभी झाड़ू वाली बन के आते हैं, हरे कृष्णा क्या हो रहा है पीछे, तो कम करो आवाज जरा, इतना कुंकू नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के रूप, बड़ों प्रकार, कभी ब्रह्मचारी बन के आते हैं, बड़े ब्रह्मचारी से ध्यान में बैठे हुए, सब लोग आते हैं मिलने के लिए, अरे बड़े बाबा आए आशीर्वाद लेने को जाओ, सब लोग पहुंच जाते हैं उधर, राधा रानी भी पहुंच जाती है आशीर्वाद लेने के लिए, बोले बहुत बड़े बाबा हैं, औरतों को देखते भी नहीं, सब लोग प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद देना चाहिए। फिर कुछ देर बाद में भांडा फूट जाता है तो ब्रह्मचारी बनकर आते हैं, कई रूप धारण करके आते हैं। ये सब भानु महल में होता है क्योंकि उनको रहा नहीं जाता है इसलिए। और जब इनका विवाह हुआ कृष्ण से के साथ, कई अलग लीला है उनकी अलग अलग, तो उस समय राधा रानी कहती है कि तुम अभी, मेरा विवाह हो चुका है आपके साथ में, लेकिन मैं तुम्हारे ससुराल में नहीं आऊँगी, तुम मेरे पास आ जाना, तो मेरे महल की शोभा भी बड़ी रहेगी, मेरा प्रेम भी बड़ा रहेगा, माता पिता भी खुश रहेंगे कि लड़की हमारे पास ही है। इसलिए कृष्ण भगवान भी उनके साथ ही रहते हैं, आप देखा ना। लेकिन आप लोगों ने मंगल आरती में एकदम गौर से देखा क्या, गौर से एकदम ध्यान से, जैसे आप लोग चुनरी ओढ़ते ना ऐसे, वैसे कृष्ण को भी चुनरी ओढ़ा के रखा है। एक ही ऐसा जगह है दुनिया में जहाँ पर कृष्ण भगवान सखी बनकर रहते हैं, उधर एक बरसाने में ऊपर मंदिर में एक लिखा हुआ है, अरे राधा रानी तुमने ऐसा कितना, कौन सा तपस्या किया है, इन अ पोएट्री फॉर्म इट इज रिटन कि व्हाट काइंड ऑफ ऑस्टेरिटीज एंड तपस्या यू हैव परफॉर्म्ड दैट पर्सनैलिटी विच तीन लोक तारण, जो तीन लोगों के लोगों को तारण करते हैं, वो तुम्हारे यहाँ पर सखी बनकर कैसे खड़े हैं, हाउ इट इज पॉसिबल। जो तीनों लोगों को तारते हैं, जो तीनों लोकों में जितने लोग रहते हैं, स्वर्ग लोक पाताल पृथ्वी पर जितने भी रहते हैं जीव को, सबको तारण करते हैं वो, डिलीवर्स एवरीबडी फ्रॉम साइकिल्स ऑफ बर्थ एंड डेथ, वो कैसे, आपने क्या जादू किया है कि आपके पास वो स्त्री बनकर रहते हैं, सखी बनकर रहते हैं, ऐसा लिखा उधर। और बहुत सुंदर सुंदर लीला अभी कितनी बताएं आपको, लेकिन ये भानुवर की लीला है। भानुगढ़ में श्रीदामा अनंग मंजरी राधा रानी रहते हैं, वहाँ पर कृष्ण भी शादी के बाद रहने लगे। एक बार वहाँ पर कृष्ण भगवान जो है ना, वो राधा रानी का प्रेम टेस्ट करने के लिए एक देवी बनकर आए, मतलब गोपी बनकर आए एक्चुअली, उसका नाम भूल गया मैं, क्या बनकर आए वो, तो वो आए घर पे और कहने लगे कि अरे मैं जब आ रही थी वहाँ से तो वो काला कलूटा आ गया, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, हाथ ट्विस्ट कर दिया, मैंने बहुत मना किया फिर भी उन्हें हाथ जोर से छोड़ा नहीं, देखो कितना दर्द हो रहा है, लाल लाल हो गया, देखो एक दो कंगन भी टूट गए मेरे, कौन है वो, तो वो कहते हैं कि वो नंद का लाला है, बहुत शरारती है वो, बहुत पापी है वो, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो राधा रानी को अच्छा नहीं लगा ऐसे सब सुन के, तो वो कहती है कि अरे राधा को पता है क्या वो कौन है, अरे वो पूर्व जन्म के नरसिंह भगवान है, उसने हिरण्यकश्यप को मारा था, अरे उसने ऐसा किया था, उसने वैसा किया था, बहुत गौरव करती है कृष्ण का वो। और जब कृष्ण का गौरव कर रही है तो ये जो गोपी बनकर कृष्ण आए हैं उनको भी ऐसा हृदय में ऊपर नीचे हो रहा है, हाँ एक्टिंग कर रहे हैं ना पूरा, कृष्ण को गाली दे रही है वो, लेकिन स्वयं कृष्ण है ना वो, राधा रानी का प्रेम देख, राधा रानी जितना वो गाली दे रहे हैं कृष्ण को उतना प्रेम से राधा रानी कृष्ण के बारे में गौरव कर रही है। फिर बाद में वो कृष्ण जो गोपी बने हुए हैं उसको रहा नहीं जाता है। वो कहते हैं, मतलब वो आइडिया करते हैं, उनको ना इतना प्रेम होता है मन में राधा रानी के प्रति, क्योंकि राधा रानी कितना प्रेम से कृष्ण के बारे में डिफेंड कर रही हैं, क्या वो कृष्णा इज गुड, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, तुम ऐसे बोलना नहीं चाहिए, अपसा बोलना अपराध है, फिर वो कुछ बुरा बोलती है, फिर वो कुछ उसको ग्लोरीफाई करते हैं। वो सब देख के फिर कृष्ण को रहा नहीं जाता है, वो अपना रूप है ना, ही इज अनेबल टू मेंटेन। सो वो कहते हैं कि चलो मैं आपको भी आपका एक टेस्ट करती हूँ, तुम अभी कृष्ण का ध्यान करो और तुम्हारा और कृष्ण का प्रेम सच्चा है तो अभी के अभी कृष्ण यहाँ पर आने चाहिए, आँख बंद कर लो और देखता हूँ मैं तुम्हारा कृष्ण का प्रेम कितना सच्चा है। जैसे वो आँख बंद करती है यहाँ से उठ के भाग जाते हैं और सब कपड़ा उतारते हैं और कृष्ण बंद कर लौट के वापस आते हैं। तो फिर वो राधा रानी कृष्ण को बोलते हैं, तुमने कभी अभी कभी किसी को देखा जाते वक्त? हाँ मैंने एक गोपी को जाते हुए देखा। अच्छा, बड़े गुस्से में थी वो गोपी। अच्छा, उसने कहा था कि तुम अगर मेरा मुझ पर प्रेम करते हो तो आँख बंद करो। मैंने आँख बंद कर किया तो उठ के चली गई वो। तुम कहाँ से आ गए? मैं तो आ ही रहा था आपको मिलने के लिए, ऐसे बोल के फिर इसको मिलते। तो यही लीला भी उधर भी उधर ही हुई थी भानु लीला में, भानुगढ़ पे। तो इस तरह से भानुगढ़ से ही राधा रानी रोज नंदगांव जाती थी। नंदगांव वो लीला क्या थी कि उधर एक कुंड है, गैवर कुंड। उस कुंड में राधा रानी एक बार मट्टी का खेल खेल रही थी। आप लोग खेलते ना मट्टी में, बचपन में खेला कि नहीं आपने? गुड़िया गुड़ी का खेल नहीं खेला क्या? एक गुड़िया और एक गुड़ा, उसकी शादी होती है। हाँ, सब खेला ना आपने? हमने तो खेला है बहुत सारा। हम लोग कहते हैं घर घर, मतलब घर घर कहते हैं। देखती लास्ट घर घर नहीं, घर घर। तो वो मट्टी मट्टी में खेल रहे थे। तो मट्टी का चूल्हा, मट्टी के बर्तन, मट्टी के चावल, मट्टी की खीर, मट्टी की पूड़ी, मट्टी की सब्जी, मट्टी के पकौड़े सब बन रहे हैं। राधा रानी बहुत प्रेम से बना रही है। तो जब एकदम एकदम मन लगाकर खेल रहे हैं, एकदम दिल लगाकर, ऐसे नहीं कि झूठ मूठ का खेल रहे हैं, रियल दे आर इन्वॉल्व फुल्ली। तो जब ऐसा उनका रसोई बन रहा है, सभी सखियां उसको हेल्प कर रही है, कोई काट के दे रही है, कोई मट्टी की सब्जी काट रही है, कोई मट्टी का आलू, मट्टू का आटा गूंथ रही है, मट्टी की लोटरी बन रही है, सब सब मट्टी का एवरीथिंग ब्रज रज। और वो सब रेडी हो जाता है पूरा, मतलब अलग आइटम्स चूल्हा वगैरह रेडी हो जाता है। उतने में उधर दुर्वासा मुनि आते हैं। तो दुर्वासा मुनि आते ही कुछ गोपियां वहाँ पर खड़ी होती हैं। तो आइए महाराज जी, आइए, खाना तैयार है, खाने को आ जाइए। तो आपको मालूम है दुर्वासा मुनि कैसे होते हैं? दुर्वासा मुनि की स्पेशलिटी क्या है? हाँ, उनको गुस्सा आता है बहुत। वो कौन है? कल मैंने बताया था आपको ना। हाँ देखो, सब भूल गए है ना, सब लोग भूल गए। अरे अत्रि मुनि की कहानी बताई थी ना आपको, अनसुया की। तो दुर्वासा मुनि कौन है? दुर्वासा मुनि शंकर जी के अवतार है, जो दुर्वासा बन के अत्रि अनसुया के पेट जन्म हुआ उनका। यस्टरडे बताया था ना। और विष्णु कौन बनकर आए? दत्तात्रेय। ठीक है, गुड। तो बहुत गुस्सा करते वो। तो जैसे ये लड़कियां बोलती है खेल खेल में, आइए महाराज जी, आइए भोजन कीजिए, तो बोलते हैं मुझसे मजाक करते हो, भस्म कर दूंगा। तो ये सब गोपियां भाग जाती है एकदम डर के मारे। अरे हमने तो ऐसे ही प्रेम से बोला, तो गुस्सा आ गया, बोला भस्म कर दूंगा, भाग के राधा रानी के पास आ गए। राधे राधे, देखो कोई बाबा है लाल लाल आंखें उनकी, बोल रहे भस्म कर दूंगा। तो वो ऐसे चल के फिर राधा रानी के पास में आते हैं। राधा रानी बड़े प्रेम से उनको देखती है, बोले महाराज जी इतना क्यों गुस्सा करते हैं, भोजन कर लो, बढ़िया खीर बनी है, खा लो। तो राधा रानी का एक खासियत है, व्हेन शी स्पीक्स ना द पर्सन इन फ्रंट बिकम्स टोटली मेस्मराइज्ड। तो क्या बोलते हैं? सम्मोहन। जैसे वो बोलते हैं ना तो आगे वाला आदमी एकदम हाँ 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 यस यस यस, क्या करूँ बोलो। तो एकदम उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है, एकदम क्रोध शांत हो जाता है। राधा रानी जो है एक मिट्टी के पात्र में मिट्टी की बनी हुई खीर मुनि जी को खिलाते हैं और मुनि जी वो एकदम प्रेम से खाने लगते हैं। और वो जब खाते हैं मिट्टी की खीर तो उनको एकदम बहुत ही सुंदर खीर खाने का आनंद मिलता है और वो खीर का स्वाद इतना अच्छा रहता है कि मुनि की आँख से आंसू आते हैं, प्रेम के आंसू, खुशी के आंसू। बोले इतनी बढ़िया खीर मैंने कभी भी नहीं खाई। बोला अच्छा, तो और मांगते हैं और खाते हैं, बड़ा पेट भर के खाते हैं। खा क्या रहे हैं? मिट्टी खा रहे हैं, लेकिन आनंद क्या आ रहा है? खीर खाने का। तो वो राधा रानी को आशीर्वाद देते हैं, वो कहते हैं कि अभी मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे हाथ से जो भी खाना बनेगा वो एकदम अल्टीमेट स्वादिष्ट बनेगा, उससे बढ़िया स्वादिष्ट और कोई चीज़ नहीं होगी जितना आपके हाथ में स्वाद आएगा। जो भी खाएगा तुम्हारे हाथ का खाना, वो कभी भी उसको बीमारी नहीं होगी, he will never fall sick, और जो भी खाएगा वो हमेशा विजयी रहेगा, he will be always victorious, ऐसा वो वरदान देते हैं उसको। अभी ऐसा वरदान किसी को मिला? समझो आपको मिला, लोकेश्वरी को मिला समझो, तो दुनिया भर के लड़के आएंगे ना, अरे कौन है वो लोकेश्वरी, आई वॉन्ट टू मैरी हर, अरे इसके हाथ का खाना खाएगा तो बीमार नहीं पड़ेगा आदमी, he will always be victorious, हाँ वो कभी इतना स्वाद रहेगा कि कोई कंपेयर नहीं कर सकता है। तो ये बात तो फैलेगी ना सब जगह पर, इट विल स्प्रेड ना एवरीवेयर, तो ऐसे ही ये बात सब जगह फैल जाती है। अरे पता है आपको, पता है, सुना आपने, आज सुना दुर्वासा मुनि आए थे, उन्होंने खीर खाई मिट्टी की और उन्होंने आशीर्वाद दिया राधा रानी को, अच्छा सब लोग सब जगह तालियां बज रहे, सब लोग खुश हो रहे, अरे हमारे राधा रानी को इतना अच्छा वरदान मिला, हमारे राधा रानी तो है ही इतनी अच्छी, तो उसको वरदान मिलना ही चाहिए, आज तो भगवान ने पूरा कृपा कर दिया उसके ऊपर। फिर बरसाने के बाहर खबर गई और कहाँ पहुंची? अरे सब लोग होशियार लोग हैं, सब ये एवरीबॉडी सो इंटेलिजेंट, नंदगांव बोलते हैं, मुझे लगा वृंदावन बोलेंगे, गोकुल बोलेंगे, नंदगांव पहुंच गई। नंदगांव में किसको पता चला? कृष्णा को। और किसको पता चला? यशोदा मैया को। तो यशोदा मैया के मन में टोंग टोंग घंटी बजी, तो ये लड़की मेरे लड़के को मिलनी चाहिए, बिकॉज वो अपने लड़के के लिए सबसे बेस्ट चीज हमेशा करती है। उसके पास में जितनी गाय है ना, उसमें से 100 गाय उसने चुन के रखा हुआ है अलग करके, और उसको ऐसा घास खिलाती है वो, जो घास को कमल की खुशबू आती है। अभी खाली हम पढ़ सकते हैं, हमको तो पता नहीं ऐसा घास कहाँ रहता है, लेकिन वो घास है ना उसको कमल की खुशबू आती है, ब्यूटीफुल स्मेल। हमारे यहाँ पर कमल को भी खुशबू नहीं आती है, तो घास को कैसे आएगी? सब पेस्टिसाइड यूरिया फॉस्फेट मार के सारा कमल का खुशबू का केमिकल ही बंद कर दिया, पूरा सब्सटेंस ही खत्म कर दिया। आज मैंने गिरिराज महाराज को गुलाब की माला पहनाई तो बोले कितना सुंदर खुशबू है, बॉम्बे में खुशबू नहीं आता है। मैंने कहा गुलाब के झाड़ को पेस्टिसाइड मार के जो खुशबू वाला है ना सब्सटेंस, वो खत्म हो जाता है पूरा, खाली रंग दिखता है, नो नो खुशबू, किधर भी जाओ ये गुलाब के देखो कितनी खुशबू है। तो वो जब गाय को 100 गाय को वो घास खिलाती है तो वो गाय जब दूध देती है तो उस दूध को भी कमल की खुशबू आती है, स्मेल ऑफ लोटस फ्लावर्स। फिर वो दो दूध का जब दही जमाती है तो उसको भी कमल की खुशबू आती है, फिर जब मंथन करके मक्खन निकालती है उसको भी कमल की खुशबू आती है, और वो कमल की खुशबू वाला जो मक्खन है वो कृष्ण को खिलाती है। लाखों लाखों गाय में से 100 गाय बना के रखे उसने ऐसी, और तो गाय का नाम क्या है? पद्मगंधा, पद्म यानी लोटस, गंधा यानी स्मेल। जिन गायों के दूध को कमल की खुशबू आती है ऐसे गाय के दूध को पद्मगंधा दूध कहते हैं, और ऐसे गायों को पद्मगंधा गाय कहते हैं। ऐसा वो अपने बेटे के लिए बेस्ट 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 चीज़ें हमेशा देती है, तो बहु भी बेस्ट होनी चाहिए ना, और नॉट जब सुनती है तो बोलती नहीं अभी मेरा बेटा जो है ना उसको जन्म से कंस की तरफ राक्षस आ रहा है मारने के लिए, कितना संकट है ना, बचपन जितना इतना सा था तभी पूतना आई थी दूध पिलाने के लिए उसको, उसके बाद वो शक्टासुर आया, उसके बाद में चुनावर्त आया, उसके बाद में क्या क्या नहीं हुआ, कितना संकट, रोज के रोज संकट। तो इसको कुछ अच्छा होना चाहिए, तो बोलते इसके हाथ का खाना खिलाएंगे ना तो उसको कोई मार नहीं सकेगा, स्वादिष्ट भी रहेगा, हाँ बीमार भी नहीं पड़ेगा। तो एक दिन वो बहाना बना के भानुगढ़ आती है, भानु महल में बड़ा उत्सव होता है। उसमें देखती है कि राधा रानी इतनी सी लड़की है अपने घर में, यहाँ रसोई में इतनी सी लड़की, छोटी सी लड़की, अपने सौ हजारों दोस्तों को मतलब सखियों को लेकर अकेली भोजन बना रही है। कई सैकड़ों चूल्हे लगा के रखे हैं, एक साथ में सब आइटम बन रहे हैं और सब आइटम पे उसका कंट्रोल है, उसका बराबर सबको गाइड कर रही है, इसमें ये करो, उसमें वो करो, इसको हिलाओ, इसको ये करो, इसको उतारो, नया रखो। ऐसे इतनी छोटी लड़की हजारों सखियों को लेकर सैकड़ों चूल्हों पर इतने सारे आइटम बना रही है अकेली। और ये कैसा है, नंदगांव से आई है, वो फेस्टिवल में नहीं आई है, वो केवल राधा रानी को देखने को आई है कि वो इज दिस गर्ल। सीधे जाती है किचन में, वो सबको देखती है तो इतना उसको आनंद आता है कि इतनी सुंदर लड़की है, इतनी अच्छे गुण है उसके, इतनी एक्सपर्ट मैनेजर अभी है, इतना किचन में संभाल रही है, इतनी छोटी सी है। तो भात आती है तो उसके पीछे पीछे कीर्ति मैया भी आती है कि हमारे मेहमान किधर गए, तो किचन के पास गए, तो कीर्ति मैया उधर आती है, तो कीर्ति मैया को गले लगाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारी लड़की जो है वो हमारे यहाँ पर भोजन बनाने को आ सकती है क्या। तो कीर्ति मैया बड़ी खुश हो जाती है, हाँ आ सकती है। तो उस दिन से राधा रानी बरसाने से नंदगांव में जाने लगती है भोजन बनाने के लिए। ऐसा कहते हैं कभी कभी वो जाती नहीं थी, कभी कभी जाती थी। तो जो जाती थी, ये कमरा है ना, कमरा कितना बड़ा कमरा है, ये कमरा भर के लड्डू बना के छोड़ के जाती थी। कमरा में कितना लड्डू हो सकते हैं। हाँ ब्रजेश्वरी, तुम्हारे कमरे में एक लड्डू भर दिया तो कितना लड्डू हो जाएगा उसके अंदर, यू डोंट नो। उसको कहते हैं बंटा भोग। हाँ, बंटा भोग यानी कि इतना बड़ा लड्डू होता है, इतना बड़ा, और वो रेडी रहता है नंदगांव में। यशोदा माई हमेशा उसको बना के रखती है, और वो लड्डू एक्चुअली यशोदा माई नहीं बनाती है, राधा रानी बनाती है उनके लिए। और इतना बना के लेती है कि इसको तो कभी भी रात को, दिन में, बीच रात में कभी उठता तो मिठाई चाहिए तो उसके पास में रखना चाहिए, वो हमेशा रेडी होना चाहिए। और वो कपाट में, कमरे में से भर भर के लड्डू बना के लेके जाती है, वापस आती है। फिर वो मैंने आपको कहानी बताई ना, यहाँ पर रोज का आना, रोज का जाना, रोज का आना, रोज का जाना, फिर बीच में एक दिन क्या हो गया, हल्दी लगाया। हाँ पता है, सबको याद है, सब पीले पोखर में गए थे ना सब लोग। तो वो जो बुलाने के लिए आई थी ना कीर्ति मैया, कीर्ति मैया को बताने के लिए यशोदा माई भानु महल में आई थी, उधर से ही फिर आना जाना शुरू हो गया था। तो ये हुई भानु महल की लीला। हाँ, फिर दानगढ़ में जाते हैं हम लोग। दानगढ़ में एक मंदिर है बहुत, जयपुर का मंदिर, उसका नाम क्या है, राधा कुशल बिहारी। तो उसकी कहानी ऐसी है कि जयपुर के एक राजा थे, बड़े भक्त थे भगवान के, उसने दानगढ़ पर एक बहुत सुंदर मंदिर बनाया। इतना सुंदर मंदिर बनाया कि एक एक काम देखेंगे ना उसका, पत्थर का, एक तो पत्थर लेकर पहाड़ पर चढ़ाया, पता नहीं कितना टाइम लगा होगा उसको इतना पहाड़ पे पत्थर चढ़ाने के लिए। वो आपने देखा ना उधर रंगीली महल में एक पत्थर का मंदिर बन रहा है, पता है कितने साल से बन रहे हो, अरे कितने साल हो गए उसको, अभी भी बन रहे हो, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पे है, ट्रक ग्राउंड लेवल पे आता है उधर ही उसको काटते हैं, ये तो पहाड़ पे पत्थर चढ़ाया, इतना सुंदर बनाया है, आपको लेके जाएंगे उधर दर्शन करने के लिए। ये सोचकर बनाया कि राधा रानी का जो मंदिर है वो पुराना हो गया है अभी, तो नया मंदिर होना चाहिए। तो बहुत सुंदर मंदिर बनाया, बड़े प्रेम से बनाया, बहुत साल लगा उसको बनाने के लिए। जब रेडी हो गया तो पे प्लानिंग हो गया कि अभी राधा रानी की मूर्ति जो है भानुगढ़ में उसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, और अभी कल वो होने वाला था, टुमारो। तो आज रात को राजा को स्वप्न आया, राधा रानी स्वप्न में आई, बोली कि मैं तुम्हारे मंदिर में नहीं आऊँगी क्योंकि मैं मेरा घर छोड़कर तुम्हारे मंदिर में नहीं आ सकती, भानुगढ़ जो है, भानु महल, वो मेरा घर है, इसलिए प्लीज़ डोंट टेक मी आउट ऑफ भानु महल। अभी आप सोचो, आपने इतना भक्ति से कितने साल तक इतना मेहनत किया, और अभी कल आपको राधा रानी को शिफ्ट करना है, तो राधा रानी कहते मैं नहीं आऊँगी, कैसा लगेगा आपको, आप क्या बोलेंगे, थैंक यू वेरी मच, नहीं आए ना, ठीक है, आराम से रहो। उन्होंने कहा जैसे आपकी इच्छा, क्योंकि मैंने आपके खुशी के लिए ये मंदिर बनाया है, अगर आपकी खुशी अपने घर पे रहने की है तो मेरी भी खुशी उसमें ही है, इट्स ऑल राइट। हम लोग ऐसे बोल सकते क्या, एक भक्त का लक्षण है ये, अ डिवोटी इज लाइक दैट। वो इतनी सारी मेहनत करने के बाद में भगवान की इच्छा अगर और कोई इच्छा है तो ही सेज ओके फाइन, क्योंकि वो जो भी काम करता है भगवान के खुशी के लिए करता है। ये बहुत बड़ा लेसन है इसके अंदर। इतना बड़ा मंदिर बनाने के बाद में राधा रानी ने मना कर दिया तो उसने भी हाँ कर दिया, नो प्रॉब्लम, और अपने मंदिर में दूसरा मूर्ति बना के स्थापन किया। उसका नाम है राधा कुशल बिहारी जी, कुशल बिहारी जी। तो बड़ा जो जयपुर का मंदिर दिखाया ना दूर से आपको, उस मंदिर में राधा कुशल बिहारी जी विराजमान हैं। जयपुर के राजा ने उसको बनाया है इसलिए उसको जयपुर मंदिर कहते हैं। उसके बाजू में एक मंदिर है दान बिहारी जी, वहाँ पर भगवान ने आकर दान मांगा था। गोपियों ने बहुत छेड़ा था उनको उस समय, बहुत टीजिंग किया था, बहुत चिढ़ाया था उनको कि नंद के राजा के पुत्र बनकर आते हो, भिखारी बनकर यहाँ पर दान मांगते हो ऐसा कर। इसलिए उनका नाम है दान बिहारी, वहाँ पर प्रेम का दान मांगते हैं। हाँ, जगत के स्वामी, द किंग ऑफ किंगडम ऑफ गॉड, यहाँ पर आकर क्या करते हैं, एक तो सखी बनते हैं, नंबर वन लड़की बनते हैं और दान मांगते हैं, भिक्षुक बन जाते हैं, भिक्षुक बेगर। किसका दान मांगते हैं? प्रेम का दान मांगते हैं। वो प्रेम के भूखे हैं, सब कुछ तो उनका है लेकिन फिर भी वो अपने भक्तों के प्रेम के भूखे हैं। तो दानगढ़ में भी बहुत सुंदर सुंदर दान की लीला हुई है। उसके आगे आप विलासगढ़ जाएंगे तो विलासगढ़ में ऐसा कहते हैं कि वहाँ पर भगवान झूला झूलते हैं, सखियाँ गीत गाते हैं, एंड द लॉर्ड इज स्विंगिंग ऑन द स्विंग। उसका नाम विलास लीला, मतलब आनंद की लीला। तो उसके बाद में हम लोग गए थे, कहाँ गए थे, चौथे गढ़ पे, मानगढ़। मानगढ़ में क्या हुआ था बताया नहीं तो कैसे मालूम पड़ेगा आपको? आप बोलो, बताया नहीं आपने। अभी बताएंगे आपको। मानगढ़ में राधा रानी कृष्ण पर रूठती है, कृष्ण पता है ना कैसे हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, तो कभी कभी उनको गुस्सा आता है। एक बार क्या बोले, अच्छा कई बार गुस्सा आता है उनको, कई कारण है उनके गुस्सा आने के। आपको पता है कृष्ण भगवान को मुरली बजाने को किसने सिखाया? हु इज द मुरली टीचर ऑफ कृष्णा? इतने एक्सपर्ट मुरली बजाने वाले ना वो, उनको मुरली बजाने को राधा रानी ने सिखाया। राधा रानी उनकी मुरली के गुरु हैं। कृष्ण भगवान इतना सुंदर डांस करते हैं, उनका नाम है नटराज, नटवर, वृंदावन नटवर उनका नाम है, एक्सपर्ट इन डांसिंग। महेश जी, उनको डांस किसने सिखाया? राधा रानी ने सिखाया। जमुना जी के किनारे में राधा रानी उनको डांस क्लास लेती है, कितना बढ़िया सीन है ना, जमुना किनारे में डांस क्लास चल रहा है। और कृष्ण भगवान बड़े चतुर हैं, बहुत चालाक हैं, और राधा रानी के संग में बहुत टाइम रहना चाहिए इसलिए जानबूझकर रॉन्ग स्टेप डालते हैं। वो तो बहुत एक्सपर्ट है, उनको तो एक झटके में सब सीख सकते हो, लेकिन जानबूझ के राधा रानी स्टेप्स डाल के सिखाती है तो जानबूझ के रॉन्ग स्टेप डालते हैं। तो फिर राधा रानी बोलते हैं, अरे श्याम सुंदर जी नहीं ऐसे ही, ऐसे करना है आपको, तो फिर दोबारा रॉन्ग स्टेप डालते हैं। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, बहुत देर बाद उसको समझ में आता है ये मुझे उल्लू बना रहा है, ही इज नॉट, ये समझ में नहीं, ऐसा नहीं है, वो जानबूझ के रॉन्ग स्टेप डाल रहा है। तो उस गुस्सा आ जाता है, फिर चले जाती है, यू आर टीजिंग मी, यू आर चीटिंग मी, ओके। और एक कारण है गुस्सा आता है उनको, मिलने को बुलाते हैं और लेट आते हैं तो बड़ा गुस्सा आता है उनको, चले जाते हैं। मिलने को बुलाते हैं और किसी और को मिलने जाते हैं। हाँ, बहुत होशियार है वो, उनकी एक गर्लफ्रेंड नहीं, बहुत गर्लफ्रेंड है उनके, और बहुत लोग ऐसे चालाक भी है। वो यहाँ पर राधा रानी तैयार हो रही है कृष्ण को मिलने के लिए, कुछ टाइम अपॉइंटमेंट हो गया, इधर मिलना है, तो एक सखी आ रही है कहाँ से और देखते, अरे तो श्याम सुंदर जी यहाँ पर चंद्रावली को मिल रहे हैं, बड़े हंसी मजाक हो रहा है, बड़े प्रेम से बैठे हैं, झूला झूल रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, पान खिला रही है उनको, बड़े प्रेम से, इतना तो पता भी चला नहीं कि मैं गुजरी वहाँ से, इतना मशगूल। तो राधा रानी के पास आके बोलते हैं, अरे तुम यहाँ तैयार हो रही हो, क्या फ़ायदा है, वो तो ऑलरेडी चंद्रावली को मिल रहे हैं उधर। तो राधा रानी बहुत गुस्सा होती है, आधा श्रृंगार छोड़ती है, जाती है भाग भाग के, देखती है हाँ वो तो बैठ के चंद्रावली को मिल रहे हैं, चले जाती। एक बार क्या हुआ, कृष्ण भगवान और राधा रानी बैठे हुए थे, तो कृष्ण ने कहा बहुत देर तक चेहरा देखा उसका, बहुत प्रेम से। फिर कहा, तुम्हारा चेहरा तो चंद्रमा जैसा है। आप में से कितने लोगों की शादी हुई है? हाउ मेनी आर मैरिड? रिंस इज मैरिड, 1, 2, 3, 4। सबको आपके आपके हस्बैंड ने आपको बताया कि आपका चेहरा चंद्र जैसा है तो कितना अच्छा लगेगा आपको? आप बोलेंगे क्या बनाऊं आज? जो बोलो वो बनाऊंगी। तो आपको अगर आपने आपके हस्बैंड ने चंद्रमा बोला, मून लाइक फेस बोला, चंद्रमुखी, तो कितना आनंद आएगा आपको। लेकिन राधा रानी को गुस्सा आया। बताओ क्यों गुस्सा आया? हाँ, होशियार लड़की है बहुत। कई कारण है उसके कि चांद का कंपेयर करने के बाद भी गुस्सा क्यों आया। बोलते चांद पे दाग है, हमारे चेहरे पे कहते दाग नहीं है। फिर बोलते चांद को ग्रहण लगता है, हमारे सौंदर्य को कभी ग्रहण लगता नहीं है। चांद जो है वो पूर्णिमा के बाद में छोटा 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 होता है और एक दिन डिसअपीयर हो जाता है, दिखता ही नहीं है। होता है ना ऐसा? बोले हमारा सौंदर्य कभी भी कम नहीं होता है, ऑलवेज बढ़ते रहता है हमारा सौंदर्य। और कहते हैं चंद्रमा जो है ना उसके पीछे बहुत सारे स्टार्स जो है ना, पता है ना क्या करते हैं, हमारी बॉम्बे की भाषा में क्या बोलते हैं, लाइन मारते हैं। मेनी मेनी स्टार्स आर आफ्टर चंद्रमा। लेकिन हम जो हैं वो आपके लिए पूरी तरह समर्पित हैं। आई एम फुल्ली डेडिकेटेड टू ओनली यू, नो अदर बॉयफ्रेंड। ऐसे बहुत सारे कारण हैं, इसलिए मैं तुम पर नाराज हूं क्योंकि तुमने मेरी कंपैरिजन चंद्र से की है। तो गुस्सा होकर चले जाते, रासलीला में लेट आते हैं तो गुस्सा होकर चले जाती है। एक जगह है आगे, बहुत दूर है यहां से, वृंदावन से भी आगे जमुना के पार है, उसका नाम है मानसरोवर। तो रासलीला में एक बार किसी और को मिलते मिलते आते आते रासलीला में लेट हो गया उनको आते वक्त। तो ये सज सज कर आके खड़ी थी वहां पर और ये आए ने देर से, तो चली गई छोड़ के वो, और जमुना पार जाके बैठी और रोने लगी, बहुत रोने लगी गुस्से से। एक बड़ा पॉन्ड बन गया उधर, बिग पॉन्ड ओनली ऑफ राधा रानी इज एंग्री टीयर्स, हॉट टीयर्स। उसका नाम है मानसरोवर। बहुत सुंदर जगह है वो, बहुत सुंदर। तभी आपको कई बार आना पड़ेगा वृंदावन में ये सब देखने के लिए। एक कैंप में क्या होता है, वृंदावन बहुत बड़ा है, इसमें सब जगह पर अच्छी अच्छी कहानियां हैं, अच्छी अच्छी लीला होती है। तो मैंने आपको कई एग्जाम्पल दिए क्यों क्यों उनको गुस्सा आता है। जब वो गुस्सा आता है तो मानगढ़ पे जाके बैठ जाती है। आपने सुना है क्या कभी, जब कैकेयी को गुस्सा आया था तो कैकेयी कहाँ गई थी? इंग्लिश में बोलते हैं सल्की चेम्बर्स, हिंदी में बोलते हैं क्रोध भवन। रानी का एक जगह होता है अपना क्रोध एक्सप्रेस करने के लिए, एक अच्छा महल बना के रखते हैं वो। वहाँ जाके ब्लैक साड़ी पहनते हैं, जमीन पर लेटते हैं और रोते हैं। तो राजा को खबर मिलती है रानी क्रोध भवन में गई है। राजा दरबार से 2 घंटे की छुट्टी लेकर क्रोध भवन में आता है, क्या हुआ तुमको आज? तो उधर कैके ने उनसे वर मांगे थे। एनीवेज, तो वैसे जब राधा रानी को गुस्सा आता है तो वो मानगढ़ पे चढ़ बाके बैठ जाती है रूट की। तो जब पहले उन्होंने बोला कि चंद्रमा जैसा फेस है, तभी वो नीचे थे, ग्राउंड लेवल पे थे, तो वो एक स्टेप ऊपर जाके बैठ गई। तो कृष्ण भगवान बहुत परेशान हो गए, अरे तुम, मैंने तो ऐसा तुमको खुश करने के लिए बोला था, तुम तो नाराज हो गई। अरे मैंने ऐसा नहीं समझा था, अरे मेरा ऐसा मीनिंग नहीं था, अरे आई डिडंट मीन दिस, आई डिडंट मीन दैट, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, गो अवे फ्रॉम हियर। तो कृष्ण ललिता को बोलते, ललिता कुछ करो, अभी गड़बड़ हो गया। मैंने कुछ सोचा था और बोला कुछ और हुआ कुछ और, जाओ उसको बनाओ। तो वो जाके बनाने की कोशिश करती है, तो ललिता कहती है, राधा रानी कहती है, दूर हो जाओ मुझसे, उस काले कलोटो का नाम लो मत लो मेरे सामने, डोंट टेक हिज नेम इन फ्रंट ऑफ मी, आई एम वेरी एंग्री विथ हिम। तो वापस आती है वो, तो कृष्ण से पूछती है, वो तो मना कर रही है, अभी क्या करूं, जाओ दोबारा जाके बनाओ। तो जब दोबारा आती है तो और 2 स्टेप पड़ जाती है, फिर बनाती है। फिर वो कहती है, बात मत करना मुझसे उसके बारे में। फिर नीचे आती है और बोलती है, वो मना मान नहीं रही है, बोलते प्लीज जाओ ना वापस। जब ललिता वापस जाती है और 2 स्टेप ऊपर चढ़ती है, ऐसा करते करते एकदम पर्वत के टॉप पे पहुंच जाती है, और पर्वत के टॉप पे पहुंचते पहुंचते सैकड़ों बार ललिता अप एंड डाउन करती है, आवत जावत हार गई, बाद में बोलती है तुम लोग दोनों नाराज हो, तुमने अपराध किया, वो नाराज हो गई, मुझे क्यों दौड़ा रहे हो बीच में मैं थक गई ऊपर नीचे जाकर, ना वो मान रही है तो तुम मान रहे हो, आप भी एक्सेप्ट नहीं करते हो कि भाई ठीक है गुस्सा हो गया जाने तो आज का दिन भूल जाओ ना, कल आ जाओ वापस आप भी नहीं मान रहे हो और वो भी नहीं मान रहे, मैं करूं क्या, मैं भी थक गई ऊपर नीचे जाकर। तो विशाखा जाके कान में कुछ बोलती है कृष्ण के, तुरंत कृष्ण उठ के चले जाते, ललिता को भी आश्चर्य होता है अरे उठ के चले गए, और राधा रानी वहां उठ के बैठी हुई है। बीच में एक बात बना भूल गया मैं, बीच में ललिता एक बार उसको कृष्ण को हाथ पकड़ के लेके जाती है उसके पास, और उधर एक फोटो है, मैंने उसका फोटो निकाल के दिखाया ना आपको, कृष्ण का राइट हैंड राधा रानी का लेफ्ट हैंड ऐसा ज्वाइन करने का प्रयास कर रही है, वो इधर देख रही है, फिर कृष्ण को उधर से लेके आती है तो इधर देखती है, फिर वहां से लेके आती है तो उधर देखती है, मतलब शी इज नॉट इंटरेस्टेड ओनली, देखना ही नहीं उसका चेहरा मुझे आपको। तो फिर वो कृष्ण की बहुत परेशानी होती है, फिर वो विशाखा कान में कुछ बोलती है, कृष्ण चले जाते हैं और राधा रानी उधर ही ऊपर जाके बैठी हुई है। कुछ देर बाद में वहां पर एक मोर आता है और डांस शुरू कर देता है, डांस शुरू होने के बाद में अपना पूरा पंख फैलाता है पूरा फर्स्ट क्लास, और डांस शुरू करता है, बहुत सुंदर डांस करता है, इतना सुंदर डांस करता है कि ललिता विशाखा बोलती है अरे राधे इतनी नाराज क्यों हूँ, वो तो गया, देखो मोर आया है, मोर को देखो कितना सुंदर नाच कर रहा है, तो वो मुड़ने को भी तैयार नहीं है, बाद में बहुत मनाते हैं कम से कम, अरे वो तो शाम सुंदर गया, मोर को देखो कम से कम, मोर को देखो नाच कर रहा है कितना सुंदर। तो वो मोर को देखती है तो उसका गुस्सा भूल जाती है, वो मोर को देखने लगती है, बहुत देर तक देखती है तो मोर इतना सुंदर नाच करता है, जैसे वो देखता है कि राधा रानी देख रही है तो और सुंदर नाच करने लगता है, बाकी मोर भी आ जाते हैं, वो सब लोग साथ देने चालू करते हैं, दे स्टार्ट अकंपनिंग। तो राधा रानी को वो सब मोर नाचते हुए देखकर इतनी खुशी होती है, वो खुद जाकर मोरनी बनकर नाच करने लगती है, शी बिकम्स पी हैन, पीकॉक एंड पी हैन, और दोनों मिलकर नाच करने लगते हैं, बहुत देर तक नाच करते हैं, बहुत देर तक नाच करते हैं, और लास्ट में राधा रानी ऐसी और कृष्ण भगवान ऐसी। मैंने भांडा फोड़ दिया पहले ही, गड़बड़ कर दिया मैंने, एनीवे तो जब वो लास्ट पोज में आते हैं, बहुत पास में आते हैं, तब राधा को समझता है कि ये मोर नहीं है, ये कृष्ण है, तो उसका गुस्सा तब तक तो ऑलरेडी ठंडा हो जाता है, कितना सुंदर मोर बन के नाच किया। वो किधर किया, मोरकुटी, जो मोरकुटी का टेम्पल था ना उधर ये लीला हुआ है, वो पहाड़ पर बैठी हुई है, वहाँ से वो देखती है और वहाँ पर उनका डांस होता है। उसी जगह पर एक बार राधा कृष्ण ऐसे घूमते घूमते आए थे, सुंदर हवा चल रही थी, हवा से उनके पल्लू ऐसे उड़ रहे थे, खुशबू आ रही थी यहाँ से वहाँ, बादल गड़गड़ा रहे थे, हल्की हल्की बूंद गिर रही थी। उस समय राधा रानी अपने पैंजण ऐसे बजाना शुरू करती हैं, छुम 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 छुम, वेरी ब्यूटीफुल म्यूजिक। फिर वो उसका म्यूजिक सुनकर कृष्ण को बड़ी प्रेरणा होती है, कृष्ण अपनी मुरली निकालते हैं और मुरली बजाना आरंभ करते हैं। तो म्यूजिक किसकी है, केवल पैंजण और पायल और मुरली। वो देखकर सब गोपियाँ आती हैं, अपने कंगन छुम 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 बजाना शुरू करते हैं। तो ओनली इसकी म्यूजिक है और किसकी म्यूजिक नहीं है, गोपियों के पायल और गोपियों के कंगन, राधा रानी के कंगन, राधा रानी के पायल और कृष्ण की मुरली, इतना बजने लगता है। वो सुनकर सब मोर भाग भाग के आते हैं, जब मोर आते हैं तो बादल बरसने लगते हैं, फिर मोर नाचने लगते हैं, और राधा रानी कृष्ण सब मोरों को नाच करने के लिए इंस्पायर करते हैं। ये भी लीला वहाँ पर हुई है। तो एक दिन और लीला हुई थी कि कृष्ण मोर बनकर नहीं, मोर जैसा नाचने लगते हैं, तो राधा रानी भी मोरनी जैसे नाच करने लगती है। फिर कृष्ण एक बार मोर बनकर आते हैं और राधा रानी मोरनी बनकर आती हैं और वो नाच करते हैं। तो मोरकुटी में क्या है, वराइटीज ऑफ मोर लीला, मेनी मेनी टाइप्स ऑफ मोर लीला, कभी गुस्से में किया हुआ, कभी प्रेम से किया हुआ, कभी मोर से किया हुआ, कभी खुद मोर बने हुए हैं, ऐसा जगह है वो। तो उस जगह पर ना अभी कुछ साल पहले, 400-500 साल पहले, उसी जगह पर जहाँ पर ये लीला हुआ है, एक साधु रहता था, और वो साधु अंधा था, और उसका एक डिसाइपल था, पता है कौन था डिसाइपल उसका? एक शेर उसका डिसाइपल था, वन टाइगर, लायन और टाइगर, टाइगर। तो वो टाइगर ना ही वॉज फुल्ली वेजिटेरियन, वो कोई मांस नहीं खाता था। वो उसके गले में, वो अंधा जो साधु था उसके गले में एक झोली लटकाता था, वन बैग ऑफ क्लॉथ। और वो शेर घर घर में नॉक करके भिक्षा मांगता था। अब समझो आपने घर पे 7 बजे नॉक करके कौन आता है आपके घर पे? दूध वाला आता है, पेपर वाला आता है, सब्जी वाला आता है ना? तो इन द मॉर्निंग अगर आपके घर पे बेल बजी तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? पेपर वाला आया होगा, दूध वाला आया होगा। सपोज वन डे यू गो, यू ओपन द डोर की पेपर वाला आया होगा एंड यू सी अ टाइगर इन फ्रंट ऑफ डोर, कैसा लगेगा आपको? तो ऐसे दरवाजे बंद होते हैं और उसमें नॉक होता है और खोलते हैं, देखते हैं क्या टाइगर गले में झोली लटका के खड़ा है। तो उनको पता था कि ये टाइगर जो है वो उस बाबा का डिसाइपल है, वो रोटी मांगने आया है। तो वो बिना डरे हुए, टाइगर भी शांत खड़ा है, ऐसा ढों ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, आराम से खड़ा है। फिर वो रोटी लेके आते थे और झोली में डालते थे, झोली में। फिर वो दूसरे घर में जाएगा, वो भी झोली में रोटी डालते थे। फिर 2-3 घर में हो गया, आपने उस महाराज के लिए कितना चाहिए उतना हो गया, ऐसा नहीं कि सब घर में जाके लेके आए, उसको पता है कितना लेना है, हो गया वो। फिर पूरा पहाड़ चढ़ेगा और मोड़कटी में जाएगा और खड़ा हो जाएगा ऐसा। फिर महाराज को पता चलेगा, क्योंकि अंधे लोगों को बहुत ज़्यादा सेंस होता है, दे अंडरस्टैंड इमीजिएटली। जाएगा वो गले से थोली उतारेगा और रोटी खुद खाते थे और बची हुई रोटी शेर को खिलाते थे, और शेर अपने गुरु की रोटी खाने के बाद में बची हुई रोटी प्रसाद खुद भी खाते थे। ऐसे महात्मा थे वो, जिसने शेर को शिष्य बनाया था। बोलो कितने बड़े पावरफुल होंगे वो। एक दिन वो साधु महात्मा को स्वप्न आता है और राधा रानी उस स्वप्न में आती है और बोलती है, एनीवे पहले स्वप्न में आकर उसको स्वप्न में मोर की लीला दिखाई पड़ती है पूरी। राधा रानी और कृष्ण मोर बनकर नाच रहे हैं, ये पूरी लीला उसको दिखाती है पहले स्वप्न में। उसके बाद में स्वयं आती है, बोलते महाराज जी इसका पेंटिंग बनाओ। बोलो मैं तो अंधा हूँ, मैं क्या करूँगा? बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी कृपा से आप वो पेंटिंग बना सकते हो, आप बनाओ, मैं दोबारा आपको नाच दिखाऊंगी, उसको देखना है आपको और आपको पेंटिंग निकालना है। तो उसको स्वप्न में राधा रानी ने गाइडेंस दिया पूरा। इसलिए मैं हमेशा स्वप्न लोगों को प्रश्न पूछता हूँ, गूगली क्वेश्चन पल में, कैन अ ब्लाइंड मैन सी अ ड्रीम, यस और नो? हाउ? What do you see? What do you think? कि आपकी आंखें देखती है कि आप देखते हो? Who sees? You see or your eyes see? आपके eyes के बोल, eyes के आंसर में भी दम नहीं है और हम के आंसर में दम, दोनों ऐसे दब दब के बोल रहे हैं। जो हम बोल रहे हैं वो भी दब दब के बोल रहे हैं, जो eyes बोल रहे हैं वो भी दब दब के बोल रहे हैं। एक तो जवाब दो कुछ कॉन्फिडेंटली, सोल, न्यू आंसर, आंसर इज राइट। आइज डोंट सी, यू सी। आइज केवल एक, कभी चश्मा, चश्मा देख रहा है कि मैं देख रहा हूं? बोलो ना, आई एम सीइंग थ्रू द चश्मा, चश्मा इज नॉट सीइंग, है ना? जब प्रभु जी फोटो निकालते हैं तो फोटो कौन निकाल रहे हैं? कैमरा निकाल रहा है कि वो निकाल रहे हैं? प्रभु जी निकाल रहे हैं। कैमरा इज अ इंस्ट्रूमेंट ओनली। जब आपको वो सुनाई पड़ता है तो कान सुनता है कि तुम सुनते हो? आप सुनते हैं, सुनने वाले आप हो, कान खाली इक्विपमेंट है, समझे ना? इसलिए आप जब शांत बैठते हो तब आप बातें करते हो क्या? अरे यस, आंसर इज यस। डोंट यू टॉक टू योरसेल्फ इन साइलेंस? हाँ, इनफैक्ट टॉक ड्यूरिंग साइलेंस इज द मोस्ट पावरफुल टॉक। दिल की बात साइलेंस में होती है, जोर जोर से बात करने से दिल की बात नहीं होती है। जब दो प्रेमी एकत्र आते हैं तो कुछ बात नहीं करते, वो आंखों आंखों में देखते रहते हैं, तो बात करते कि नहीं करते? दे डोंट टॉक बट दे कीप टॉकिंग लॉन्ग टाइम। थ्रू आइज, है कि नहीं? ऐसा है वो, ये समझने वाली बातें हैं। तो वैसे ही आंख नहीं देखती है, आत्मा देखती है। तो साधु महात्मा को आत्मा तो थी ना, ही हैड ब्लाइंड आइज बट ही वॉज नॉट ब्लाइंड बाय सोल। इसलिए अंधे लोगों को भी स्वप्न आता है, ये ध्यान रखना। अभी हमारे हॉस्पिटल में एक एम्प्लॉई है गोपीनाथ, वो ब्लाइंड है, उनको पूछना आपको ड्रीम आता है क्या। मैं जो बोल रहा हूँ उसको पूछना ना आप, वो तो ब्लाइंड है, उसको पूछो आप। तो ऐसा है, तो अंधे व्यक्ति को राधा रानी ने स्वप्न दिया और स्वप्न में उसके हाथ से एक्चुअल का पेंटिंग बनवाया, खुद डांस करती रही कृष्ण के साथ में और उसने पेंटिंग बनाया। वो पेंटिंग जो अंधे भक्त ने बनाया था वो आज भी मोरकुटी में है, और मोरकुटी में कोई राधा कृष्ण की मूर्ति नहीं है, मोरकुटी में वही पेंटिंग है, उसकी पूजा होती है। दैट इज मोरकुटी का लीला है। ऐसा सब बरसाना है, इतनी सुंदर सुंदर लीला है उसके अंदर। अभी इतना सुंदर सुंदर लीला करना है तो डीमन लोग आ सकते हैं क्या उसके अंदर? नहीं आ सकते ना, डिस्टर्ब होगा ना सब इतना अच्छी लीला में। इसलिए राधा रानी ने पहले से ही कंस को लड़की बनाकर ये चैप्टर बंद कर दिया था। क्लोज द चैप्टर, नो मोर डीमंस हियर। तो इस तरह से बरसाना धाम जो है बहुत ही मधुर है, बहुत मीठा मीठा धाम है। यहाँ पर अनंत लीला है। वो जो पर्वत है ना, चार पर्वत ऐसे होता है ना पर्वत, जब मिलते हैं तो कैसा होता है, बीच में जगह नहीं होती है, या तो एक आदमी वहाँ से आएगा या तो एक आदमी वहाँ से जाएगा। देर इज नो टू वे ट्रैफिक, एक एक आदमी आ सकता है या तो एक एक आदमी जा सकता है। तो राधा रानी और गोपियाँ बरसाने से ऐसे आती हैं मटके पे मक्खन, दही, दूध और छाछ और अलग अलग आइटम बना के मथुरा में बेचने को जाती है मार्केट में। तो जब वो उधर से निकलती हैं छोटी सी गली में, क्या बोलते हैं उसको, साकरी खोर। साकरी यानी छोटी सी, खोर यानी रास्ता, साकरी खोर यानी स्मॉल लेन, ओनली वन पर्सन कैन क्रॉस। तो वहाँ से राधा रानी और गोपियाँ वन बाय वन अपने मटका लेकर आती है नंदगांव से। यहाँ पर कृष्ण पहुँच जाते हैं डंडा लेकर, बोलते रुक जाओ, स्टॉप हियर। क्या हो गया? बोले ये हमारा इलाका है, आप लोग हमारा इलाके से इतनी कॉस्टली कॉस्टली कीमती कीमती वस्तु लेकर जाते हो और मथुरा में बेचते हो, हमको टैक्स नहीं पे करते हो, हमारे लैंड में से गुजरते हो, आपको टैक्स पे करना होगा। तो फिर ललिता बोलती कि राधा रानी एकदम सिंपल है ना, बहुत सिंपल हार्टेड, तो एकदम डर जाती हो। तो ललिता सामने आती है, वो कहती है अरे ये सब प्रॉपर्टी ना वृषभानु महाराज की है, ये सारा ब्रज जो है वो वृषभानु महाराज का है, और वृषभानु महाराज का नंद महाराज से फ्रेंडशिप है। नंद महाराज के पास कुछ नहीं था लेकिन फ्रेंड पे उनको दया आया और फ्रेंडशिप में उन्होंने कुछ लैंड उसको दे दिया, तब जाकर तुम्हारा पिताजी राजा बना हुआ है। ये तुम्हारा पिताजी राजा बना है ना, ये हमारे राधा रानी के पिताजी की कृपा है उसके ऊपर। ज़्यादा मत होशियारी करना, ये लैंड तुम्हारी नहीं है, ये वृषभानु महाराज की मतलब राधा रानी की लैंड है और तुम बाहर से आए हो, तुम टैक्स पे करना चाहिए। मतलब ये सब हम नहीं जानते, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तुमसे टैक्स लेकर ही जाऊँगा। अभी क्या करेंगे, वो रास्ते में खड़ा है, सब लड़के इधर खड़े हैं, सब लड़कियाँ वहाँ खड़ी हैं, उनके हाथ में कीमती सामान है ना। सपोज वेन यू हैव 10,000 हियर, 15,000 हियर एंड गोल्ड एंड डायमंड हियर एंड समबडी कम्स विद स्टिक टू यू, यू आर ऑलरेडी स्केयर्ड बिकॉज यू हैव लॉट्स ऑफ वैल्यूएबल थिंग विद यू, सो यू कांट आर्ग्यू मच। ऑल्दो यू आर स्ट्रांग बट यू नो कुछ हो गया तो, ये गिर गया तो, गिर गया तो कितना लॉस हो जाएगा। तो उनके पास कीमती वस्तु है, उनके पास कुछ नहीं है, वो डंडा लगे खड़े हैं। बाद में बहुत भैंस होती है, यू कीप ऑन आर्ग्यूइंग आर्ग्यूइंग फाइटिंग फाइटिंग फाइटिंग। उसके एंड में कृष्ण भगवान फाइट करते करते मटका डंडा लेते हैं और एक मटका फोड़ देते हैं राधा रानी के सर का ऊपर का। तो मटका नीचे गिरता है, वो पूरा गिरा हुआ मक्खन कृष्ण अपने हाथ से चाट चाट के खाते हैं और बचा हुआ जो मटका है और हाथ है वो पत्थर से पोंछते चले जाते हैं। रोज का नाटक है, एवरी डे जो वहाँ पे आते हैं तो सब सखा लोग वहाँ पे आते हैं और रोज मटका फोड़ते हैं। तो एक दिन राधा रानी और गोपी बहुत परेशान हो जाती है, वो सोचते हैं कि अच्छा नहीं है, डेली हम लोग मार खाते हैं, डेली हम लोग हार जाते हैं, हमारे मटके फोड़ते हैं, डेली हमारा नुकसान होता है, एक दिन इनको अच्छा सबक सिखाना चाहिए। तो अच्छा प्लानिंग बनाते हैं, बहुत बढ़िया प्लानिंग बनाते हैं, किसी को बोलते नहीं हैं। और वैसे एवरीडे से ऐसे वहाँ पहुँच जाते हैं। जैसे श्याम सुंदर जी आते हैं, रोकते हैं, बोलते हैं ले लो कोई बात नहीं, ले लो प्लीज टेक। तो देखते हैं सूरज कहाँ से आया, आज ईस्ट से आया कि वेस्ट से आया। दे डोंट एक्सपेक्ट दैट ना, कि वे रोज झगड़ा करते हैं तो बाद में फोड़ना पड़ता है, फिर जबरदस्ती लेना पड़ता है। आज तो बिना कुछ झगड़ा कुछ नहीं अपने आप दे रहे हैं, बोला क्या बात है, नहीं ले लो आज आपके लिए लाया है सब, अभी आज बेचने का नहीं है, सब आपके लिए बना के लाए। अच्छा वाह क्या, तो दिन बहुत अच्छा है, बोलते बहुत अच्छा स्टार है आज। बोले एक ही हमारा कंडीशन है, वो क्या है ना, हमारा जो मक्खन है ना बहुत कीमती है, बहुत मेहनत से बनाया है। आप लोग हाथ से खाएंगे तो गिर जाएगा ना जमीन पे, इतना वैल्यूएबल गिर जाएगा तो कैसे चलेगा। आप लोग ना वो है ना कप्स लीफ कप्स वो लेके आओ। उस जमाने में और मैंने भी 30 साल पहले देखा हुआ है अपनी आंखों से, कदम्ब के पेड़ पर पत्तों के कप्स ऑटोमेटिकली बनते थे। आई हैव गॉट फोटोग्राफ्स ऑफ लीफ कप्स रेडीमेड ऑन लीव ऑन ट्रीज, पेड़ पर रेडीमेड लीफ कप्स। तो उस समय बहुत ऐसे पेड़ वहां पर हुआ करते थे। तो जैसे उन्होंने सुना, अरे बस इतना ही क्या कंडीशन, अरे तो कितने लगे हुए दोना उधर झाड़ पे, सब लोग भाग जाते हैं और दोना निकालने को जाते हैं कि आज हमको बिना झगड़े के मक्खन मिलने वाला है, ये सोचकर सब लोग दोना तोड़ रहे हैं। तो उनकी चोटी है ना लंबी लंबी लटक रही है, सब गोपियां भागती हैं उनके पीछे और सब चोटियां उनकी पत्थर को और ट्री को सब बांध देते हैं। तो सब लोग ऐसे स्टिक हो जाते हैं। तो जब उतरने का प्रयास करते हैं तो सब चोटियां बांध के रखी हुई है, तो छोड़ नहीं सकते उसके। वो तो चिल्लाते हैं कृष्णा बलराम बचाओ बचाओ, हमारे चोटियां बांध दिया है, प्लीज बचाओ बचाओ। तो आमतौर पर क्या होता है, जनरल टाइम्स व्हाट हैपन्स, जहाँ पर भी संकट आता है तो सब सखा लोग चिल्लाते हैं कृष्णा बलराम बचाओ, देखो धनुकासुर आ रहा है, देखो देखो अरिष्टासुर आया है, देखो देखो बकासुर आया है। तो कृष्णा बलराम आते हैं और राक्षस को मार देते हैं। दिस इज यूजुअल एक्सपीरियंस है ना, एवरी टाइम देयर इज अ डेंजर दे कॉल कृष्णा बलराम एंड कृष्णा बलराम कम एंड किल द डीमन। आज भी वो पुकार रहे हैं संकट में असहाय होकर, कृष्णा बलराम बचाओ बचाओ। कुछ देर बाद में आवाज आती है, मधुमंगल बचाओ सीतामा बचाओ। अरे ये तो कृष्ण बलराम की आवाज है। हमको बचाने के बदले में खुद ही बचाओ बचाओ बोल रहे हैं। अरे ये कैसे हो गया, क्योंकि उनकी भी चोटियां बांध दी है उन्होंने। तो हमारे गुरुजी ने कथा बताई हमको और हमको ही प्रश्न किया कि सब जगह कृष्ण बलराम सबको संकट से बचाते हैं और बरसाने में खुद ही पुकार रहे हैं, संकट में असहाय होते हैं। एवरीबडी इज कॉलिंग, ही ऑल्सो इज कॉलिंग हेल्पलेसली, ऐसा क्यों। तो हमको समझ में आया क्या बोलने का, तो हम लोग वो क्रॉस करके नीचे उतरे, सब लोग जमा हो गए उधर, वन बाय वन ना, वन 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 करके वहाँ क्रॉस किया, नीचे उतर के बैठ गए। गुरुजी भी बैठ गए, उन्होंने कहा कि सब जगह पर कृष्ण बलराम बलवान होते हैं लेकिन बरसाने में आने के बाद में वो एकदम राधा रानी के इन्फ्लुएंस की वजह से बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, हेल्पलेस हो जाते हैं। इसलिए सब पुकारते हैं और ये भी पुकारते हैं बचाओ बचाओ। फिर राधा रानी और सब गोपियाँ ऐसे आती हैं, याद रखना दोबारा कभी हमको तकलीफ दिया तो वादा करो कि अभी कल तुम लोग सब लोग वादा करो, जब तक तुम लोग वादा नहीं करते हो तब तक तुम्हारी चोटियाँ हम लोग छोड़ेंगे नहीं। क्या वादा करना बताओ बताओ, बहुत परेशान हो गया अभी देखो, सब सर भी दुख रहा है वैसा पकड़ के, चोटी भी लटकी हुई है, खर भी दुख रहा है, बाल भी दुख रहे हैं, मक्खन भी नहीं मिल रहे उसके लिए तो आए थे। कल तुम्हारा जो है ना लीडर, ये श्याम सुंदर काला कलोटा, इसको कल राधा रानी बन के आना है, चुंदरी और लहंगा और फरिया और चनिया चोली पहन के आना है, घर से मक्खन लाना है। हाँ इसकी कई वैरायटी है स्टोरीज़ की। एक कथा में ऐसे बताया कि उधर की उधर ही कृष्ण को उतारते हैं और उसका कपड़ा उतार के उसको चनिया चोली पहनाते हैं और लड़की बनाकर सर पे मटका देते हैं, बोला जाओ अभी यहाँ से हम लोग वक्का मटका फोड़ेंगे, और सब लोग उसको पकड़ के इतना चिढ़ाते हैं फिर उसका मटका फोड़ देते हैं। एक कहानी में लिखा है कि उन सब सखाओं को बोलते हैं आप सबको कल लड़की बन के आना होगा और अपने अपने घर से अच्छा अच्छा मक्खन लेके आना होगा, हमारी राधा रानी और सारी गोपियां मिलकर सखा बनकर आएंगे, लड़का बनकर आएंगे डंडा लेकर, और तुम वहां से आओगे हम यहां से आएंगे आपको रोकेंगे और सब लोग अपने अपने डंडे से आपके सर का मटका फोड़ेंगे। तो वो लीला जो है उधर हुई है और फिर कृष्ण भगवान को बंदी बनाकर घसीट के लेके जाते हैं, वो उसका फेटा जो है ना फेटा उसको छोड़ देते हैं। एक और इंसल्टिंग चीज होती है, एक होता है कपड़ा उतर का खींच लेना, दूसरा इंसल्टिंग चीज है आपका फेटा जो है ना उसको छोड़ा देना, रिलीज दैट मीन्स वी आर इंसल्टिंग यू, वी आर टेकिंग योर फेटा अवे, तो वो उसकी गांठ छोड़ देते हैं तो फेटा जो है वो घसीट के जाता है, तो फेटे का निशान भी वहाँ पर पड़ा हुआ है। राधा रानी ने जो मटका तोड़ के फिर मक्खन खाया उसका भी वहाँ पर निशान है। ऐसा रोज वहाँ पर मटकी फोड़ लीला होती है। और भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी के दिन वो लीला वहाँ पर करते हैं, उसको कहते हैं बूढ़ी लीला, वार्धकी लीला बोलते हैं उसको। बड़ी बड़ी पार्टीज वहाँ पर आते हैं और उसी जगह पर वो लीला करते हैं, मटकी फोड़ लीला। राधाष्टमी अष्टमी को होती है, अष्टमी के बाद में 5 दिन के बाद में उसी जगह पर वो लीला होती है। फिर नवमी के दिन, सॉरी चतुर्दशी के दिन वहाँ पर जाते हैं प्रेम सरोवर पर, वहाँ बोट लीला होती है, वो मैंने आपको वहाँ पर बताया नहीं था। प्रेम सरोवर जब बना ना उसके बाद में राधा और कृष्ण वहाँ पर बोट में बैठकर घूमते हैं और सब सखियाँ बोट को बहुत सजाते हैं, फूल लगाते हैं, राधा कृष्ण को इन्वाइट करते हैं, फिर बैठते हैं, फिर 8 सखियाँ उधर बैठ के वाद्य बजाते हैं, पान खिलाते हैं और पूरा पौंड में उनको बोट की सैर कराते हैं। उसको कहते हैं डोंगी लीला, मतलब नौका विहार। इस तरह से बरसाने में आनंद ही आनंद है, किधर भी जाओ बहुत सुंदर सुंदर लीला है। जय जय श्री राधे श्याम।